एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब दिमाग में भूल भुलैया, आईने और वो अनंत लाइब्रेरीज घूमने लगती हैं।
जॉर्ज लुईस बोर्हेस।
हाँ, जॉर्ज लुईस बोर्हेस, 20वीं सदी के अर्जेंटीना के वो महान लेखक जिन्होंने कहानियों के जरिए जिंदगी और फलसफे के, आप कह सकते हैं, बड़े सवालों को छेड़ा।
बिल्कुल, और उनका एक सवाल तो हमेशा मेरे जहन में रहता है, क्या ये हमारी दुनिया, ये जिसे हम हकीकत कहते हैं, ये खुद ही एक कहानी तो नहीं?
सही कहा। और उनका जन्म भी देखिए, एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर हुआ, 1899 में ब्यूनस आयर्स में।
हाँ, वो दौर ही ऐसा था, मतलब पुरानी दुनिया की जो निश्चितताएं थीं वो खत्म हो रही थी, मॉडर्निटी आ रही थी, विज्ञान, मनोविज्ञान सब बदल रहा था।
और अर्जेंटीना खुद भी तो अपनी पहचान बना रहा था, एक तरफ यूरोप का असर, दूसरी तरफ लातिनी अमेरिकी जड़ें।
बिल्कुल, और शायद इसी माहौल ने, इसी उथल पुथल ने बोर्हेस को वो नजर दी जिससे वो हकीकत की परतों को मतलब कुरेदने लगे।
तो उनकी अहमियत इसी में है कि लिटरेचर सिर्फ कहानी कहना नहीं है उनके लिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी कहानियां तो जैसे दिमागी वर्जिश हैं, छोटी सी कहानी होगी लेकिन सवाल इतने बड़े उठा देगी कि आप सोचते रह जाएं।
हाँ, जैसे वो समय वाला सवाल, क्या टाइम सीधा चलता है या फिर ऐसे कई रास्तों में बढ़ जाता है।
हाँ, या हमारी पहचान क्या वो असली है या हम बस किसी की नकल कर रहे हैं।
हाँ,
ये सारे सवाल आज भी उतने ही मौजू हैं।
इसीलिए शायद उन्हें लेखकों का लेखक कहा जाता है।
हाँ, कहा जाता है, और उनका असर सिर्फ लैटिन अमेरिका तक नहीं रहा, पूरी दुनिया के राइटर्स, थिंकर्स, यहाँ तक कि फिल्म मेकर्स पर भी उनका प्रभाव दिखता है।
वो ये दिखाते हैं कि कैसे, मतलब थोड़े से शब्दों में, छोटी सी कहानी में विचारों का पूरा ब्रह्मांड समेटा जा सकता है।
बिल्कुल, उनकी शैली में एक किफायत है, कम शब्दों में गहरा असर छोड़ने की कला, द आर्ट ऑफ ब्रिविटी जैसे कहते हैं।
अच्छा, उनके समय का जिक्र आया तो थोड़ा और समझते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्यूनस आयर्स में माहौल कैसा था बौद्धिक रूप से?
काफी हलचल थी, एक तरफ तो यूरोप से नए विचार आ रहे थे जैसे वो अल्ट्राइस्मो मूवमेंट।
हाँ, जिसे बोर्हेस खुद स्पेन से लेकर आए थे, है ना?
हाँ बिल्कुल, इसका मकसद था कि पोएट्री को पुराने ढर्रे से निकालो, उसमें नई ताजगी भरो, एकदम चौंकाने वाले इमेजेस यूज करो।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ जाहिर है स्थानीय पहचान, सामाजिक मुद्दे, उन पर भी जोर था, तो लिटरेरी ग्रुप्स में बहसें होती थी, जैसे वो फ्लोरिडा ग्रुप और बोएडो ग्रुप।
हाँ, सुना है फ्लोरिडा वाले ज्यादा एलीट यूरोपियन स्टाइल वाले थे।
हाँ, बोर्हेस, ओकाम्पो, बायोकासारेस जैसे लोग, और बोएडो ग्रुप ज्यादा यथार्थवादी, मतलब मजदूर वर्ग की बात करने वाले लेखक।
और इसी माहौल में विक्टोरिया ओकाम्पो की पत्रिका सुर का रोल बहुत बड़ा था।
बहुत बड़ा, सुर एक तरह से पुल बन गई थी, उसने लातिनी अमेरिकी और इंटरनेशनल विचारों को मिलाया, बोर्हेस जैसे लेखकों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया।
और अडोल्फो बायोए कासारेस के साथ उनकी दोस्ती,
अरे वो तो कमाल की जोड़ी थी, आजीवन दोस्त रहे, साथ में लिखा भी खूब, मजेदार जासूसी कहानियां, पैरोडीज, वो भी अलग अलग नकली नामों से।
लेकिन इसी दौर में फिर राजनीतिक तनाव भी बढ़ने लगा था, खासकर 1940 के दशक में खुआन पेरोन के आने के बाद।
हाँ, पेरोन का दौर बोर्हेस के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल रहा।
मुश्किल मतलब?
मतलब किस तरह की मुश्किलें?
वो पेरोन के नीतियों के खिलाफ बोलते थे, लिखते थे।
हाँ,
तो जाहिर है सत्ता को ये पसंद नहीं आया, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
उन्हें वो लाइब्रेरी वाली नौकरी से हटा दिया गया था ना?
हाँ, हटाकर उन्हें नगरपालिका मुर्गी और खरगोश निरीक्षक बना दिया। सोचिए कितना अपमानजनक पद था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। जाहिर है।
और उनकी माँ और बहन को भी? हाँ, उन्हें नजरबंद किया गया था, तो ये दिखाता है कि उस वक्त माहौल कितना खराब था और सत्ता के खिलाफ सच बोलना कितना महंगा पड़ सकता था।
उनके शुरुआती जीवन पर लौटते हैं, कहते हैं उनका घर ही एक लाइब्रेरी जैसा था।
हाँ, ये बात सही है, ब्यूनस आयर्स में उनका बचपन किताबों से घिरा हुआ बीता, उनके पिता वकील थे, साइकोलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन दिल से लेखक बनना चाहते थे, और उनकी बहुत बड़ी इंग्लिश लाइब्रेरी थी,
और उसी लाइब्रेरी ने बोर्हेस के लिए दुनिया खोली।
बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि उन्होंने स्पेनिश से पहले अंग्रेजी में पढ़ना सीखा।
अच्छा।
हाँ, शायद इसी बाइलिंगुअल परवरिश ने उन्हें भाषा को सिर्फ बोलने का जरिया नहीं बल्कि एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर के तरह देखना सिखाया।
और उनकी नानी अंग्रेज थीं, उन्होंने भी कहानियां सुनाई।
हाँ, फैनी हसलम, उन्होंने अर्जेंटीना के इतिहास की, अपनी फैमिली लेजेंड्स की कहानियां सुनाई, और वो कहानियां, वो वीरता की बातें बाद में उनके लेखन में कहीं ना कहीं झलकती हैं।
फिर परिवार यूरोप चला गया?
हाँ, 1914 में, और पहले विश्व युद्ध की वजह से वो लोग जिनेवा स्विट्जरलैंड में फंस गए, कई साल वहीं बिताने पड़े।
तो उनकी औपचारिक शिक्षा का ये अहम दौर रहा होगा?
बहुत अहम। वहीं कॉलेज गए, फ्रेंच सीखी, जर्मन सीखी, शोपेनहावर, जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट्स, इन सबको पढ़ा। और कहते हैं कार्लाइल की एक किताब पढ़ते हुए उन्हें वो ख्याल आया।
कौन सा ख्याल?
वही कि क्या हो अगर ये दुनिया, ये हकीकत जिसे हम जानते हैं, ये खुद ही एक किताब हो, एक साहित्यिक रचना।
कमाल है, ये ख्याल तो जैसे उनके पूरे काम का बीज बन गया।
हाँ, एक तरह से। फिर युद्ध के बाद वो स्पेन गए 1919 से 21 तक, और वहाँ वो अल्ट्राइज्मो मूवमेंट से जुड़े, नए कवियों से दोस्ती हुई।
राफेल कैंसिनोज, एसेंस, गुलेर्मो डी टोरे।
हाँ, वही लोग। फिर 1921 में वो ब्यूनस आयर्स वापस लौटे। अब उनके पास यूरोप का अवांतगार्ड अनुभव था और अपनी अर्जेंटीना की जमीन की समझ भी। इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की उन्होंने।
और फिर वो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में नौकरी?
हाँ, 9 साल तक। तनख्वाह तो कम थी, लेकिन पढ़ने का, सोचने का, अपने अनूठे विचारों को गढ़ने का भरपूर वक्त मिला। वो दौर शायद उनके लिए बहुत जरूरी था।
और फिर वो 1938 की दुर्घटना, वो सिर में चोट वाली घटना।
हाँ, वो एक अजीब वाक्या था। क्रिसमस की शाम थी, सीढ़ियों से गिरे, सिर में चोट लगी, सेप्टिसीमिया हो गया, काफी बीमार रहे।
और उन्हें डर था कि कहीं उनकी दिमागी ताकत न चली जाए।
हाँ, बहुत डर गए थे। तो खुद को परखने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या वो अब भी सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्होंने कुछ बिल्कुल नया लिखने की कोशिश की, एक कहानी।
और वही कहानी थी पियरे मेनार्ड क्विकसॉट का लेखक।
एग्जैक्टली। और ये कहानी लिखने के बाद उन्हें लगा कि हाँ, वो ठीक हैं। और इसी घटना ने, इसी डर ने उनके अंदर के कहानीकार को जैसे पूरी तरह से जगा दिया। ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
यहीं से उनके वो जबरदस्त आइडियाज आते हैं जिन्होंने लिटरेचर की दुनिया बदल दी, जैसे ये दार्शनिक कथा का कॉन्सेप्ट।
हाँ, फिलोसॉफिकल फिक्शन, मतलब कहानी के बहाने जिंदगी के गहरे अस्तित्व के सवाल पूछना,
और वो भी कमाल की कंसाइजनेस के साथ। छोटी छोटी कहानियां पर असर बहुत गहरा।
बिल्कुल, जैसे उनकी कहानी है शाखित पथों का बगीचा, द गार्डन ऑफ फोकिंग पाथ्स। उसमें ये जो कल्पना है,
हाँ, कि हर फैसले पर वक्त कई रास्तों में बट जाता है।
हाँ, और अनगिनत पैरेलल दुनियाएं बन जाती हैं। ये कितना मॉडर्न आइडिया है। आज जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं, उसकी झलक बोर्हेस कितने दशक पहले दिखा गए थे।
ये तो सच में सोचने वाली बात है। और उनका मेटा लिटरेचर का आइडिया, मतलब साहित्य के बारे में ही साहित्य लिखना।
हाँ, ये उनकी खासियत थी, कहानियों के अंदर कहानियां, लाइब्रेरीज के बारे में लाइब्रेरीज, जैसे लिटरेचर खुद ही अपनी जांच का विषय बन गया हो।
और वो पाठक को हमेशा चौंकाते थे, काल्पनिक लेखक, झूठी किताबें, मनगढ़ंत हवाले।
हाँ, वो ऐसा करके हमसे पूछते हैं सच क्या है, क्या वो जो लिखा है या वो जो हम सच मानते हैं। उनकी कहानियां पढ़कर अक्सर ऐसा लगता है जैसे हम किसी आईनों के हॉल में घूम रहे हैं, जहां हकीकत और वहम का फर्क ही मिट जाता है।
और ये जो टर्म है बोर्हेजियन भूल भुलैया,
हाँ,
ये तो अब आम हो गया है।
हाँ,
इसका क्या मतलब है असल में?
देखिए, ये सिर्फ एक उलझा हुआ रास्ता, मतलब मेज नहीं है, ये जिंदगी का प्रतीक है, जहां अनगिनत रास्ते हैं, अनगिनत चुनाव हैं, और शायद कोई सीधा जवाब नहीं है।
अच्छा,
ये ज्ञान की खोज का भी प्रतीक है, जो खोज कभी पूरी नहीं होती, हमेशा अधूरी सी रहती है। और आज के दौर में तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट लगता है,
इंटरनेट के दौर में।
हाँ, जहां इन्फॉर्मेशन का अंबार है, एक अंतहीन जाल, हम सब जानकारी की इस भूल भुलैया में ही तो रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं ना।
बिल्कुल सही कहा। उनकी कहानी पियरे मेनार्ड क्विकसॉट का लेखक भी तो इसी तरह के सवाल उठाती है। लेखक होने का मतलब क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है?
हाँ, वो कहानी बड़ी मजेदार है। एक लेखक है जो 20वीं सदी में, मतलब मॉडर्न टाइम्स में, हूबहू वही डॉन क्विकसॉट लिखना चाहता है जो सर्वांतेज ने सदियों पहले लिखा था, वर्ड टू वर्ड।
तो बोर्हेस का सवाल है कि क्या ये सिर्फ नकल है?
हाँ, या फिर क्योंकि समय बदल गया है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, तो क्या वही शब्द अब नए मायने नहीं रखते? क्या ये एक नई ओरिजिनल रचना नहीं बन गई? ये कहानी इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि किसी टेक्स्ट का मीनिंग सिर्फ राइटर तय नहीं करता, रीडर और उसका समय, उसका कॉन्टेक्स्ट, वो भी बहुत मायने रखता है।
चलिए, अब उनकी कुछ सबसे मशहूर रचनाओं पर आते हैं। फिक्शनिस्ट, 1944 वाली, शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है।
हाँ, फिक्शनिस, और उसके बाद आई एल अलिफ 1949 में, ये दो कलेक्शंस उनकी पहचान बन गए। फिक्शनिस में ही वो मशहूर कहानी है बाबेल की लाइब्रेरी।
हाँ, द लाइब्रेरी ऑफ बेबल।
सोचिए एक ऐसी अनंत लाइब्रेरी जिसमें हर भाषा में हर अक्षर के कॉम्बिनेशन से बनी हर मुमकिन किताब मौजूद है, मतलब दुनिया का सारा ज्ञान उसी में है।
लेकिन इतना ज्यादा है कि कुछ भी मीनिंगफुल खोजना नामुमकिन है।
बिल्कुल। क्या ये आज के बिग डेटा या इंटरनेट की सिचुएशन जैसी नहीं लगती? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड।
वाकई लगता है जैसे वो आज के युग को पहले ही देख पा रहे थे, और उसी में थ्लोन, उकबार, ऑर्बिस टर्टियस भी है।
हाँ, वो कहानी तो और भी गजब है। एक सीक्रेट सोसाइटी है जो एक पूरी काल्पनिक दुनिया थ्लोन ईजाद करती है। उसके अपने नियम, अपना इतिहास, अपनी भाषा, सब कुछ गढ़ते हैं वो।
और फिर?
और धीरे धीरे ये काल्पनिक दुनिया हमारी असली दुनिया में घुसपैठ करने लगती है, उस पर हावी होने लगती है। ये कहानी पूछती है कि क्या हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं हकीकत को बदल सकती हैं? कितना पावरफुल आइडिया है।
सच में। और एल आलिफ संग्रह, उसमें भी ऐसे ही दिमाग घुमाने वाले विचार हैं।
जैसे टाइटल कहानी एलिफ, एलिफ यूनिवर्स में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह जहां से आप पूरे ब्रह्मांड को, हर चीज को, हर एंगल से एक ही पल में देख सकते हैं।
मतलब अनंत को एक नजर में समेटना।
हाँ, जो इंसानी दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। या फिर उसी में कहानी है द इमॉर्टल, जो अमरता के विचार को ही पलट देती है।
पलट देती है मतलब?
मतलब हम सब सोचते हैं अमर होना अच्छा है, लेकिन बोर्हेस दिखाते हैं कि हमेशा जिंदा रहना कितना भयानक, कितना अर्थहीन और उबाऊ हो सकता है, एक अभिशाप की तरह।
तो ये कहानियां सिर्फ मतलब दिमागी खेल नहीं है, ये जिंदगी के बारे में गहरे सवाल उठाती हैं।
बिल्कुल। और इन सब में कुछ थीम्स बार बार लौट कर आते हैं। इन्फिनिटी, टाइम, आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन, रियलिटी और फिक्शन का घालमेल, वो लैबरिंथ, मिरर्स।
हाँ, आईने और भूल भुलैया तो जैसे उनके सिग्नेचर बन गए।
हाँ, ये उनके पसंदीदा औजार थे। इनसे वो रीडर के दिमाग को झकझोड़ते थे। वो हमें हमारी रोजमर्रा की जानी पहचानी दुनिया से उठाकर एक ऐसी जगह ले जाते थे जहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, जहाँ हर चीज पर सवाल उठाया जा सकता है।
उनकी विरासत की बात करें तो क्या अर्जेंटीना में उन्हें शुरू से ही बहुत सराहा गया?
शुरू में थोड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ क्रिटिक्स को लगता था कि उनका काम अर्जेंटीना के यथार्थ से, वहाँ की जमीनी हकीकतों से कटा हुआ है, बहुत ज्यादा बौद्धिक है, यूरोपियन है।
लेकिन युवा लेखकों पर असर पड़ा?
हाँ, जूलियो कॉर्टाज़ार जैसे लेखकों पर उनका गहरा असर पड़ा। लेकिन असली धूम तो तब मची जब 1960 के दशक में उनकी रचनाएं अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुईं।
अच्छा, तब उन्हें ग्लोबल पहचान मिली।
हाँ, अमेरिका और यूरोप में तो जैसे लिटरेरी सेंसेशन बन गए वो। पोस्ट मॉडर्न लेखक जैसे इटालो कैल्विनो, अम्बर्टो इको।
इको की गुलाब का नाम द नेम ऑफ द रोज तो काफी हद तक बोर्हेस से इंस्पायर्ड लगती है। वो लाइब्रेरी, वो रहस्य।
बिल्कुल, वो एक तरह की श्रद्धांजलि ही है बोर्हेस को। और फिर विचारक जैसे मिशेल फुको, उन्होंने तो अपनी बहुत अहम किताब द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, उसकी शुरुआत ही बोर्हेस के कोट से की है।
ये दिलचस्प है कि उनके आइडियाज लिटरेचर से निकलकर फिलॉसफी और सोशल थ्योरी तक पहुंच गए, और आज के डिजिटल युग में तो वो शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं।
निश्चित रूप से। हाइपरटेक्स्ट का कॉन्सेप्ट, विकिपीडिया, इंटरनेट का वो अंतहीन जाल, ये सब कहीं ना कहीं बोर्हेस की लाइब्रेरी या शाकित पथों की याद दिलाते हैं।
जैसे वो हमारे इन्फॉर्मेशन एज के भविष्यवक्ता थे।
हाँ, एक तरह से उन्होंने दिखाया कि कैसे ज्ञान ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है और कैओटिक भी, कैसे सच और कल्पना आपस में ऐसे गुंते हुए हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है।
उनके कुछ मशहूर कोट्स भी हैं जो उनके विचारों का सार बताते हैं, जैसे वो लाइब्रेरी वाली बात।
हाँ, मैंने हमेशा कल्पना की है कि स्वर्ग एक प्रकार का पुस्तकालय होगा। ये किताबों और ज्ञान के प्रति उनका जो गहरा सम्मान था उसे दिखाता है।
पर इसमें एक विडंबना भी है ना?
हाँ बिल्कुल। ये उस कविता से है जिसमें वो अंधे होने के बाद नेशनल लाइब्रेरी का डायरेक्टर बनाए जाने पर बात करते हैं। मतलब वो किताबों के स्वर्ग में थे पर उन्हें पढ़ नहीं सकते थे, एक शानदार विडंबना जैसा उन्होंने खुद कहा।
एक और कथन है, संदेह बुद्धिमत्ता के नामों में से एक है।
ये उनके पूरे नजरिए को, उनके इंटेलेक्चुअल ईथोस को बयान करता है। उनके लिए हर चीज को बस मान लेना, सवाल न करना, वो बौद्धिक मौत थी।
तो सवाल पूछना, संदेह करना।
हाँ, चीजों को पलट कर देखना, यही उनके लिए ज्ञान का रास्ता था। उनका पूरा काम हमें निश्चितताओं से ज्यादा संभावनाओं के बारे में सोचने को उकसाता है।
और काफ्का पर लिखते हुए उन्होंने कहा था, हर लेखक अपने स्वयं के पूर्ववर्ती बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ?
ये बहुत गहरा विचार है। देखिए, हम आमतौर पर सोचते हैं कि लेखक अपने से पहले के लेखकों से प्रभावित होते हैं, उनसे सीखते हैं।
हाँ, ये तो सामान्य बात है।
कि अतीत को भी बदल देता है, उसकी रचनाएं हमें पुराने लेखकों को, उसकी परंपरा को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करती हैं, जैसे वो पुराने लेखक उसी नई रचना के लिए जमीन तैयार कर रहे थे।
वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है
ना? ये लिटरेरी इन्फ्लुएंस की पूरी धारणा को ही बदल देता है।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक पहलू, जैसे उनका अंधापन जिसका जिक्र आया।
हाँ, वो हेरिडिटरी था, उनके पिता को भी था, और 50 की उम्र के बाद धीरे धीरे उनकी नज़र पूरी तरह चली गई। लेकिन जैसा हमने कहा, इसने शायद उनकी आंतरिक दृष्टि को और पैना कर दिया। वो अपनी ज़बरदस्त याददाश्त और कल्पना के सहारे रचना करते रहे, अपनी कहानियां दूसरों को डिक्टेट करते थे।
और नोबेल पुरस्कार वाला विवाद उन्हें कभी नहीं मिला, जबकि वो इतने बड़े, इतने प्रभावशाली लेखक थे।
हाँ, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनके कुछ राजनीतिक बयान, जो काफ़ी कंजर्वेटिव माने जाते थे, और खासकर 1976 में चिली के तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे से एक सम्मान स्वीकार करना।
हाँ, वो पिनोशे वाला मामला काफी विवादित था।
बिल्कुल, तो माना जाता है कि इन्हीं वजहों से स्वीडिश एकेडमी ने उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, हालांकि साहित्यिक योग्यता के आधार पर वो इसके हकदार माने जाते हैं।
तो अंत में अगर हम सोचें, बोर्हेस हमें क्या सोचने के लिए छोड़ जाते हैं? आज के पाठक के लिए उनका क्या महत्व है?
मेरे ख्याल में वो हमें हमारी दुनिया को, हमारी इस जानी पहचानी हकीकत को एक खुली किताब की तरह, एक पहेली की तरह देखने की दावत देते हैं।
वो सवाल पूछते हैं, क्या हम किसी कहानी के किरदार हैं? क्या हम अनंत संभावनाओं की किसी भूल भुलैया में भटक रहे हैं?
हाँ, और ये भी कि भाषा क्या है? क्या वो सिर्फ सच्चाई बताने का जरिया है, या वो खुद सच्चाई घड़ती है? हमारे विचार हकीकत को कैसे बनाते हैं?
आज जब हम इन्फॉर्मेशन के समंदर में हैं, जहाँ फेक न्यूज, डीप फेक, वर्चुअल रियलिटी, ये सब आम बातें हैं।
हाँ, जहाँ सच और कल्पना के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई है,
तो बोर्हेस के सवाल शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी लगते हैं।
बिल्कुल, वो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को समझने का कोई एक सीधा, सरल, फिक्स्ड रास्ता नहीं है। हमें सवाल पूछते रहना होगा, अलग अलग नजरियों को देखना होगा, और शायद इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि कुछ रहस्य हमेशा बने रहेंगे। उनकी कहानियां इसी बौद्धिक सफर का, इसी खोज का न्योता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।